हमारी चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। यहाँ हजारों कहानियाँ हैं आपके लिए। प्रीति की सुबह अब आयुष्मान के चेहरे से होती थी और रात भी उसी का चेहरा देखकर होती थी। हालांकि दोनों के बीच दूरियां अब भी थीं, पर प्रीति संभलने लगी थी। उसमें पहले वाली शैतान, हंसमुख, जिंदा दिल प्रीति नजर आने लगी थी। वो आयुष्मान के साथ खुश थी और आयुष्मान भी उसमें आते इन सकारात्मक बदलावों को देखकर खुश था। गुजरते वक्त के साथ उनका रिश्ता और गहरा होता जा रहा था। दादी 15 दिन यहाँ रुकी थीं, फिर वापस चली गई थीं, पर आयुष्मान प्रीति के साथ उनके कमरे में ही सोता था। सब वैसा ही चल रहा था। दादी के आने का फ़ायदा ये हुआ था कि आयुष्मान और प्रीति के बीच की दूरियाँ कुछ कम हो गई थीं और प्रीति सामान्य हो गई थी। शायद दादी यही देखने आई थीं कि प्रीति आयुष्मान का ध्यान रख पाती है या नहीं और यहाँ अकेले दोनों किस तरह रहते हैं। प्रीति और आयुष्मान को एक दूसरे की इतनी परवाह करते और ख्याल रखते देखकर वो निश्चिंत हो गई थीं। कहीं न कहीं प्रीति अनजाने में ही सही, पर आयुष्मान की पत्नी को लेकर जो दादी को उम्मीदें थीं उस पर खरी उतर गई थी। इसलिए उन्होंने सब चिंता त्याग कर आयुष्मान की जिम्मेदारी प्रीति को सौंपकर चली गई थीं। वैसे तो सारा दिन दोनों अलग अलग रहते थे, पर सुबह शाम जितना वक्त मिलता साथ ही बिताते थे। पहले सिर्फ आयुष्मान प्रीति की परवाह करता था, पर अब प्रीति भी उसकी फ़िक्र करती थी और ये आयुष्मान को अच्छा लगने लगा था। हर इंसान की चाहत होती है कि उसकी ज़िंदगी में ऐसा कोई हो जो उसकी परवाह करे, उसकी छोटी बड़ी ज़रूरतों का ध्यान रखे, उसकी अनकही बातों को सुनने को उसके पास रहे, कोई ऐसा जिसकी मौजूदगी उसकी तन्हाई को दूर करे, जिसका साथ उसके मन को सुकून भरे एहसासों से भर जाए। दुनिया के शायद हर मर्द की ये इच्छा होती है कि जब वो काम से थका हारा वापस आए तो उसकी पत्नी उसे उसकी राह देखते मिले, जिसका चेहरा देखकर वो सारे दिन की थकान भूल जाए, जो उसका ख्याल रखे, उससे जुड़ी छोटी छोटी चीज़ों और बातों का ध्यान रखे। और प्रीति ने आयुष्मान की इन सभी अनकही इच्छाओं को पूरा कर दिया था। कहीं न कहीं प्रीति की आदत सी होने लगी थी उसे। बीते 1.5 साल से वो यहाँ अकेला रह रहा था। कितना ही थका हारा आए, अपने सब काम खुद करने पड़ते थे उसे। बात करने को कोई नहीं होता था, घर आने का मन ही नहीं करता था, क्योंकि यहाँ कोई नहीं था जिसके लिए वो वापस आने को एक्साइटेड हो। पर अब चीज़ें बदल रही थीं। लंच अब उसे बाहर नहीं करना पड़ता था, बल्कि प्रीति लंच बनाकर उसे देती थी और साथ ही सख्त हिदायत भी देती थी कि पूरा लंच खत्म होना चाहिए और अपने कलीग को नहीं खिलाना है, खुद खाना है। जब वो ऑफिस से वापस आता तो घर पर प्रीति उसका इंतज़ार करती थी। प्रीति की बातें उसके माइंड को एकदम फ्रेश कर दिया करती थीं। उसका खिला हुआ चेहरा उसकी सारी थकान मिटा देता था। प्रीति उससे सारे दिन के बारे में पूछती थी। अब आयुष्मान को अकेला नहीं रहना पड़ता था, प्रीति होती थी उसके पास। बहुत से अच्छे बदलाव आए थे उनकी ज़िंदगी में और दोनों कहीं न कहीं एक दूसरे की ज़िंदगी की कमियों को पूरा करते नज़र आ रहे थे। मामा जी मामी जी से बात भी हो जाती थी उनकी। प्रीति की राजेश से भी बात हो जाया करती थी। राजेश प्रीति को खुश देखकर सुकून से था। आज भी रोज़ की तरह दोनों सुबह सोसाइटी गार्डन से घूमकर आए थे। फिर प्रीति ने आयुष्मान के कपड़े और बाकी सब सामान निकालकर किचन में चली गई। आयुष्मान तैयार हुआ, तब तक प्रीति ने नाश्ता और लंच बना लिया था। वो आयुष्मान का लंच पैक कर ही रही थी कि आयुष्मान की तेज़ आवाज़ उसके कानों से टकराई। प्रीति, मेरी वो फ़ाइल नहीं मिल रही जो मैं कल लाया था, और गाड़ी की चाबी भी नहीं मिल रही, कहाँ रखी है तुमने? आपने कहा था ज़रूरी फ़ाइल है, तो मैंने उसको आपके कबर्ड के नीचे वाले ड्रॉअर में संभाल कर रख दिया था, और कार की चाबी डोर के पास ही टंगी है, कल आपने ही वहाँ टांगी थी। आयुष्मान, जो पिछले 15 मिनट से दोनों चीज़ों को ढूंढ ढूंढ कर परेशान हो गया था, उसने बेबसी से अपना सर हिला दिया। कबर्ड से फाइल निकाली और कार की चाबी लेकर रूम से बाहर निकला तो कमरे की तरफ तेज कदमों से बढ़ती प्रीति से टकरा गया। प्रीति अपने हाथ को तौलिए से पोंछते हुए जल्दी जल्दी कमरे की तरफ बढ़ रही थी। अचानक आयुष्मान से हुई इस टक्कर के कारण उसका बैलेंस बिगड़ गया, पर वो पीछे को गिरती उससे पहले ही आयुष्मान ने उसकी कमर पर अपनी बांह लपेटते हुए उसको अपनी तरफ खींच लिया और प्रीति आयुष्मान के चौड़े सख्त सीने से आ टकराई। सब इतनी जल्दी हुआ कि वो कुछ समझ ही नहीं सकी। उसके हाथ से तौलिया छूटकर नीचे फर्श पर गिर गया। आयुष्मान की फाइल भी नीचे गिर गई। प्रीति का सर आयुष्मान के सीने से लगा हुआ था। उसके सीने में मौजूद दिल एकाएक जोरों से धड़क उठा। अब ये गिरने के डर से था या आयुष्मान की नज़दीकियों का असर था, ये पहचान पाना जरूर मुश्किल था। पहले कुछ सेकंड तो दोनों ही खड़े खड़े रह गए। फिर आयुष्मान ने चिंता भरी नज़रों से प्रीति को देखते हुए सवाल किया, तुम ठीक तो हो?
हाँ हाँ, मैं ठीक हूँ।
प्रीति एकदम से हड़बड़ा गई और आयुष्मान से दूर होने की कोशिश करने लगी। आयुष्मान ने उसको ठीक से खड़ा किया और जैसे ही उसने उसकी कमर पर से अपनी बाहों को हटाया, प्रीति झट से उससे दो कदम दूर हट गई और बेचैनी से अपनी निगाहें घुमाने लगी। अब भी उसका दिल जोरों से धड़क रहा था। प्रीति अभी पूरी तरह से खुद को संभाल भी नहीं सकी थी कि आयुष्मान की नाराज़गी भरी आवाज़ उसके कानों से टकराई।